आज 10 अगस्त है और श्री बलराम जयंती के उत्सव में अभी 2 मंगलवार बाकी हैं। श्री बलराम जयंती 24 अगस्त को हम मनाएंगे, जिस दिन रक्षाबंधन भी मनाएंगे। तो बलराम जी की कथा आज हम जारी रखते हैं। श्री बलराम जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में बहुत उत्सुक रहते हैं। उनका नाम ही बलराम है। जब गर्ग मुनि ने उनका नाम रखने के लिए बताया था तो उनका बलराम ऐसा नाम रखा गया। और गर्ग मुनि ने बताया कि ऐसा नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि वो जितना भी आध्यात्मिक बल है उसका उगम रहेंगे। और राम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि राम का मतलब है संतुष्ट। हम कहते हैं ना आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ये हमेशा अपने लीलाओं के आनंद में संतुष्ट रहेंगे, समाधानी रहेंगे, इसलिए उनका नाम बलदेव रखा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो रोहिणी के पुत्र हैं, सभी प्रकार के बल के उगम हैं और शरीर के बल के भी उगम हैं। ऐसे नहीं केवल आध्यात्मिक बल हैं। शरीर का बल जो है वो वजन उठाने में, जैसे कि भीम को 10 ग्लास खीर पिलाई गई, जब दुर्योधन ने उनको पॉइजन के लड्डू खिलाए तो वो नदी के अंदर डुबाया गया उनको, और उनको सांप लोक में चले गए। और सांप लोक में चले जाने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने पहचाना कि हमारे वंश के ही व्यक्ति हैं। तो कुछ सांपों ने उनको दंश किया तो उसके सांपों के पॉइजन की वजह से उसके अंदर जो पॉइजन था उसका क्या हो गया, नलीफिकेशन, मतलब वो उसका प्रभाव नष्ट हो गया। एक विष से दूसरे विष का प्रभाव नष्ट हो गया और भीम होश में आए। तो नाग लोक के जो राजा थे उन्होंने बताया कि आप हमारे घर बहुत पहली बार और बहुत अरसे के बाद में आए हो, तो हमें आपको भेंट देने की बहुत ज़रूरत है। हम आपको एक अद्वितीय भेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप बल के बहुत भोक्ता हो, आप बलशाली हो, तो हम आपको एक गिलास खीर प्रसाद देंगे जिसके आपके हाथों में 1000 हाथी का बल आएगा। तो हमारे भीमसेन ने क्या किया, 10 गिलास खीर पिया तो उसके हाथों में 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ। और इतना बल था उनके अंदर कि महाभारत के युद्ध में गुस्से से, क्रोध से उन्होंने हाथियों को उठाकर गोल गोल घुमाकर आकाश में फेंक दिया था। वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा को पार करते हुए स्पेस में चले गए और सैटेलाइट बन गए, उपग्रह बन गए वो। और कहते हैं आज भी अवकाश में वो हाथी घूम रहे हैं, दे आर सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। कितनी शक्ति होगी उनके अंदर। हाँ, अगर हमको टेबल टेनिस का बॉल भी देंगे ना हाथ में अभी, तो भी हम लोग 10 फीट के ऊपर उसको फेंक नहीं सकते हैं। और एक हाथी को, अनंत हाथियों को उठा उठा कर उन्होंने घुमा घुमा कर फेंक दिया क्रोध से। इतना बल था उनके अंदर, लेकिन वो बल भी बलदेव जी के बल के सामने तुच्छ है, क्योंकि वो सभी जितने भी लोक हैं, ये तो कुछ हाथियों की बात हो रही है ना, जो कुछ एक लोक के कुछ हाथियों की बात हो रही है, लेकिन वो ऐसे लोक ही, अनंत लोक जो है वो अपने सर पे धारण कर रहे हैं और आराम से डोल रहे हैं। और साथ साथ में अपने शरीर का ऐसा बिछाना बना दिया उन्होंने, बिछोना, जिस पर ठाकुर जी आराम से विश्राम कर रहे हैं। ऐसे अनंत लोकों को अपने 1000 फनों पर धारण करने वाले बलदेव जी हैं। और वो भी कौन है, बलदेव जी के जो अवतार हैं अनंत शेष नाग, वो स्वयं नहीं है, वो उनके अवतार हैं। आप समझ सकते हैं कितना बल है उनके अंदर। और ये बल जो पृथ्वी पर आके लीला करते हैं तो उसकी झलक दिखाते हैं, खाली बस एक क्लिम्प्स दिखाते हैं, उनका असली बल नहीं है। उनका असली बल तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों को रिझाने के लिए, जैसे कोई फिल्म का हीरो होता है समझो, या क्रिकेट का हीरो होता है, जब वो चौका लगाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, देखो कितना बढ़िया चौका लगाया, और फिर छक्का लगाया तो और खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, झंडा फहराते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी जो कुशलता है वो अपने जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फैंस, यानी कि चाहने वाले होते हैं ना, उनके सामने प्रकट करते हैं ताकि हमारे चाहने वालों को बड़ी खुशी हो जाए। उस तरह से बलदेव जी जब पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं कृष्ण भगवान के साथ में, तो अपने जो भक्त लोग हैं उनको दिव्य आनंद प्राप्ति कराने के लिए अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि बलबल राक्षस को मारने के लिए क्या किया, उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से ऊपर उठाए और आह्वान किया हल और गदा को, दोनों प्रकट हो गए, बाएं हाथ में हल पैदा हो गया, दाएं हाथ में गदा पैदा हो गई। तो आकाश से उस राक्षस के शरीर पर हल लगाया और नीचे खींच दिया उसको आकाश से। हाँ, उनका हाथ जो है ना जमीन से आकाश तक एक्सटेंड हो गया, और जहां आकाश में वो बलबल घूम रहा था वहां उनका हल पहुंचा, खंधे पे उसको लगा दिया और नीचे जमीन पे खींच लिया और दूसरे हाथ से गदा से मार दिया। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं ऐसा दिव्य काम। ऐसे उन्होंने जब धेनुकासुर को मारा था, उसकी कथा आपको विस्तार में कभी और बताएंगे, लेकिन ऐसे क्या किया, जैसे ही उन्होंने जाके तब ताल के पेड़ हिलाए और ताल के फल जो है सब जमीन पे गिर गए, तो धेनुकासुर बड़े गुस्से से वहां पर भागा कि किसकी हिम्मत जो मेरे वन में आकर मेरे द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए पेड़ को हिला हिला कर सब फल गिरा रहे नीचे। दौड़ के आया आक्रमण करने के लिए, तो क्या क्या बलराम जी ने उसके दो पैरों को पकड़ा और गोल गोल घुमाया और ताल वृक्ष के ऊपर ही फेंक दिया उनको। जैसे वो ताल वृक्ष के ऊपर गिर गया तो ताल वृक्ष भी नीचे गिर गया उनके साथ में, लेकिन वो ताल वृक्ष जो है नीचे नहीं गिरा, वो अगले ताल वृक्ष पे गिरा, फिर वो अगले ताल वृक्ष पे गिरा। इस तरह से सारे ताल के पेड़ जो है जमीन पे आ गए और सब भक्तों को ताल के फल जो है वो प्राप्त हो गए। ताल के फल को हम क्या बोलते हैं, ताड़गोले, जहाज बोलते हैं ना ताड़गोले, वो समय के उस समय के वो बहुत सुंदर मधुर सुगंध वाले फल थे वो। और उसके बाद में बहुत सारे गधे असुर जो थे धनुकासुर के साथीदार, वो कई कोई लाल रंग के थे, कोई हरे रंग के थे, कोई पीले रंग के थे, सब गधे थे। उन्होंने आक्रमण किया बलदेव जी के ऊपर और कृष्ण बलराम ने सभी को दो दो पैर पकड़कर घुमा घुमा के सब पेड़ों पर फेंक दिया। और भागवत जी में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पूरा तालवन जो था वो रंगी बिरंगी गधों के शव से सुशोभित हो गया था। बलराम जी ने बड़े खेल खेल में उनको ऐसे मार दिया था। ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम किया, पसीना बहाया, क्या करूं अभी, कितने दिन मेहनत करूंगा और विश्राम करूंगा, ऐसे नहीं। तो ऐसे दो कथा आपको बताएंगे उनके बल की। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो जब वृंदावन आए थे, कृष्ण बलराम दोनों वापस चले गए मथुरा पे, फिर कृष्ण लौट के नहीं आए, बलराम जी सब मन को मिलने आए, तो अपने गोपियों के संग बलराम जी बैठे थे यमुना किनारे में, आराम से बैठे थे। ऐसे कहा गया है कि जैसे आसमान में कोई चमकता हुआ सितारा रहता है, वैसे बलदेव जी चैत्र के बादल के तरह सफ़ेद रंग के थे, शुभ्र रंग के थे और सूरज के समान तेजस्वी थे। बड़े शान से जमुना किनारे पत्थर पर लेटकर बैठे हुए थे, पत्थर पर टेक कर बैठे हुए थे, उनकी गोपियाँ उनके साथ में बैठी हुई थी और प्रेम का वार्तालाप हो रहा था। और ऐसे कहा गया कि सुगंधी फूल के जो पुंग केसर होते ना सुगंधित, वो हवा उसको लेकर बह रही थी और उनके शरीरों को आनंद दे रही थी। उस वे उनको ऐसा लगा कि कुछ पेय पिया जाए, तो इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वरुण देव ने अपनी कन्या को भेज दिया। और उस कन्या ने क्या किया, अपने आप को पेड़ से निकलने वाले मधु के रूप में रूपांतरित किया। पेड़ के गर्भ से निकलने वाला जो मधु होता है वो आजकल को दिखाई नहीं पड़ता है, अभी तो मधुमक्खियाँ जाती है और फूल से उसको बिन कर लाती है, एक जगह इकट्ठा करती है और उसको आदमी फिर उसको अपने लिए ले लेता है। उन दिनों में पेड़ के पत्तों से और पेड़ के शाखाओं के माध्यम से वारुणी नाम का द्रव्य उत्पन्न हुआ करता था जो मधु की तरह था। वो बन गई वो वरुण की देव कन्या वारुणी। और वो जैसे ही बलराम जी के मन में इच्छा हुई, वैसे आसमंत के सारे पेड़ों के माध्यम से वो मधु क्या बहने लगा, उनके झरने लगा उनके पत्तों से और पेड़ों से। और सभी गोपियों ने उसको पत्तों के कप में इकट्ठा किया और प्राशन किया, बलराम जी को भी दिया। और बलराम जी, और जैसे कि इस दुनिया में शराब होती है ना शराब, तो शराब का पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनको नशा आती है और उनको इंद्रियों को शिथिल कर देती है, है ना, आदमी चलने का संतुलन भी खो बैठता है, दिमाग भी उसका कुछ अलग सोचने लगता है, उसको कुछ होश नहीं रहता, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मतलब आदमी बेकार हो जाता है एकदम। लेकिन ये वारुणी ऐसा द्रव्य नहीं है, वारुण द्रव्य पीने से, ऐसा पेय पीने से इंद्रियों के अंदर दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा दिव्य नशा भी आता है जो उस नशे की तरह नहीं है। तो बलराम जी की आंखें ऐसे गोल गोल घूमने लगी, सभी गोपियां भी आनंद से बेहोश हो गई। उस समय जमुना जी के अंदर स्नान करने की इच्छा की उन्होंने, मन में इच्छा पकड़ हुई जमुना जी में स्नान किया जाए। तो जमुना जी को उन्होंने आह्वान किया, आओ, क्योंकि जमुना जी कुछ दूर थी और उनको वहां तक चल के जाने की इच्छा नहीं थी, उनको सोचा कि जमुना जी हमारे पास में आ जाए। जमुना जी को उन्होंने आह्वान किया, आओ, जहां हम बैठे वहां पर आ जाओ, हम आपके अंदर स्नान करना चाहते हैं। जमुना जी ने क्या सोचा, अरे वारुणी प्राप्त करके ये तो नशेले हो गए हैं, मैंने जाऊंगी उनके पास, मना कर दिया उन्होंने। तो बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने हल को उठाया और जमुना जी के जो प्रवाह था उसको कई सैकड़ों प्रवाह में विभाजित कर दिया, मतलब एक बड़ा प्रवाह था उनका, एक बड़ी धारा थी उसको अनंत धारा में विभाजित कर दिया, मतलब जैसे था वैसे इधर बिधर कर दिया, पूरा उनके अस्तित्व को नष्ट कर दिया समझो, है ना। एक बड़ी धारा पात्र बह रहा है उसको अगर हमने हजार धाराओं में विभाजित कर दिया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हाँ झरना भी नहीं बचेगा उसके अंदर। तो जब उन्होंने ये क्रोध दिखाया और अपनी ओर जमुना जी को खींचने का प्रयास किया और वो खींचने वाले थे तो जमुना जी स्वयं प्रकट हो गई वहां पर, देवी जमुना देवी हाथ जोड़कर प्रकट हुई और बलराम जी से माफी मांगने लगी, स्तुति करने लगी और याचना करने लगी कि कृपा करके मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको गलत समझ बैठी, मैं समझ बैठी कि आप नशे में हो तो मैं क्यों आऊं आपके पास, लेकिन मैं भी समझती हूँ कि आप परम भगवान हो और लीला कर रहे हो और मुझे सेवा का मौका दे रहे हो, इसलिए माफी चाहती हूँ और कृपा करके आप मेरे जल में स्नान कीजिए। फिर जमुना जी में बलराम जी ने और अपने सारी गोपियों को लेकर जल क्रीड़ा किया और स्नान भी किया। आज भी आप अगर जाएंगे, ये जगह कहाँ पर है, एक जगह है रामघाट नाम की, वो वृंदावन में बहुत अंदर है, बहुत दूर है वो जगह, और उसके पास में गांव भी है भय गांव नाम का। उस भय गांव में आप जाएंगे तो भय गांव में रामघाट है, रामघाट मतलब घाट नदी में होता है हमेशा, तो रामघाट वहां पर अभी भी उपस्थित है, बड़ा लंबा किनारा है उसका, और उस जगह पर जमुना जी की कई भाग में उसका विभाजन हो गया है, बहुत शाखाओं में वो बहती है, वहां पर एक ही नदी है लेकिन अनेक धाराओं में बहती है, फिर आगे जाकर फिर इकट्ठा होती है, फिर एक धारा में बहती है। ये कथा हो गई रामघाट की। दूसरी उनकी बल की कथा, अनंत कथाओं में से एक कथा ऐसी है कि ये जो महाभारत है ना, ये सभी रोमांचकारी घटनाओं से भरा हुआ है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी फिल्म का हम लोग करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, एक्शन, इमोशन, हाँ वो सब कुछ उसके अंदर है रोमांस, एक्शन, इमोशन और क्या बोलते हैं इसको, फाइट्स और स्टार स्टडेड, सब कुछ है उसके अंदर, एवरीबॉडी इज फुल ऑफ विगर, सब लोग के अंदर शक्ति, शौर्य, वीर, ये सब कुछ उसके अंदर उपस्थित है, और सब प्रकार का बोध जो है पारिवारिक बोध वो महाभारत में उपस्थित है। हाँ, उसमें युद्ध है, उसमें भाइयों का झगड़ा है, उसमें लव अफेयर्स हैं, उसके अंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए हीरो आता है, छीन के ले जाता है, बहुत सारी चीज उसके अंदर है महाभारत के अंदर। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान जब द्वारका में विवाह करते हैं, तो आपको मैंने लास्ट टाइम में कहानी बताई थी समंतक मणि की, उस समंतक मणि की लंबी कहानी में भगवान कृष्ण को जाम्बुवान की कन्या जो है जाम्बुवती, वो पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाती है, और जाम्बुवती से उनको पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम है सांब। हाँ, सांब का मतलब है स अम्ब, यानी कि अम्ब मतलब माता, जो माता को हमेशा चिपका रहता है उसको सांब कहते हैं, तो वो सांब रखा गया उसका नाम, क्योंकि वो अपने माता से इतना आसक्त था बचपन में कि माता को छोड़ता ही नहीं था। तो वो सांब जो है, मैं जब भी हमारे सच्चे जीवन प्रभु जी हैं उनके घर पे गया था एक बार, हाँ, तो उनकी दूसरी कन्या जो है वो हमेशा अपनी माता को सब पकड़ के रहती थी, क्योंकि माता काम पे जाती है ना, तो केवल शाम को घर आती है, तो माता को छोड़ती नहीं थी, तो माता की गोद में बैठकर ही माता खाना बना रही है और सब कुछ करे, मैंने कहा ये सांब की याद दिलाती है मुझे, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए माता का दामन, पैर, हाथ और गोद छोड़ती नहीं लेकिन कुछ देर के बाद बदल हो गया ना, जब बड़ी हो गए तो। हाँ, वैसे हमारे सांब भी बड़े हो गए, हाँ, राजकुमार बड़े हो गए, बड़े योद्धा हो गए, महारथी बन गए, वो भी जवान हो गए तो महारथी बन गए, तो उनको दुर्योधन की जो कन्या है लक्ष्मणा, उस पर दिल आया, उसके प्रेम में गिरे। तो लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा था, हाँ, दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है ना, भगवान कृष्ण की पुत्र की बात हो रही है और दुर्योधन की कन्या की बात हो रही है, तो कुरु सभा में लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा है, और स्वयंवर का मतलब क्या है, कन्या ऐसे खड़ी है सज सज के माला लेकर, और प्रण चलाया गया है, प्रण रखा गया कि ऐसे कैसे कोई करेगा तो उसको हमारी कन्या वरमाला पहनाएगी। तो उस सभा में बहुत सारे राजपुत्र आए हुए हैं, देश देश के राजपुत्र आए हुए हैं, बड़े बड़े राजाओं के पुत्र आए हैं इस कामना से कि लक्ष्मणा का हाथ हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन उतने में अचानक सांब जो है वो उस सभा में प्रवेश करते हैं, उस सभा में प्रवेश करते हैं और लक्ष्मणा को छीन के लेके जाते हैं सबके आंखों के सामने। भाग ले जाते हैं क्योंकि उसको क्या कहते हैं, राक्षसी विवाह कहते हैं, और क्षत्रियों को उसका अधिकार दिया गया, अगर आपको शक्ति है तो आप किसी कन्या को छीन सकते हो। फिर कन्या को छीनने के पश्चात युद्ध के लिए आह्वान किया जाएगा, उस युद्ध में उनको परास्त कर दो, फिर कन्या आपकी पत्नी हो जाएगी। ये क्षत्रियों को परमिशन है, हाँ आप मत करना इसे, आप में से कोई क्षत्रिय नहीं है। अरे हमने कथा में सुना था, हम कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। दो चार लोग डंडा लेके आएंगे, आपको अच्छी तरह पीटेंगे, आपको जेल में डाल देंगे और कन्या को घर में लेके जाएंगे, वैसा नहीं थे सांब जो है। सांब जो है इतने वीर पुरुष थे, उन्होंने जाके उसको उठाया, अपने रथ पे रखा और चल पड़े द्वारका की ओर। उतने में सब सावध हो गए, और कौन कौन सावध हो गए, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, अर्जुन, भीमसेन, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, हाँ जो सब महाभारत के जो महारथी लोग हैं ना, वो तो दो पक्ष में डिवाइड थे उस समय महाभारत के युद्ध में, लेकिन इस समय सब एक जगह खड़े थे। कुरु वंश की सभा थी ना वो, तो पांडव भी थे उसमें, कौरव भी थे और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भी थे, सबको क्रोध आ गया, चलो सांब के ऊपर आक्रमण करते हैं। और सबने साथ में वो लेकर सेना लेकर वो पीछे पड़े और उन्हें सांब के ऊपर आक्रमण किया और सावधान करके उसको रुकाया। और सांब भी बड़ा वीर पुरुष था, वो डरपोक नहीं था, कर्ण हो गया और युद्ध के लिए सबके सामने खड़ा हो गया वो, और इतना सुंदर युद्ध किया उसने, इतना सुंदर युद्ध किया कि कर्ण, दुर्योधन, भीमसेन, अर्जुन, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य सबको अकेले उन्हें परास्त कर दिया, मतलब उसके सामने वो टिक नहीं पाए, सब लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर सबने उस पर हमला किया। अब एक साथ उसको घेर लिया, हमला कैसे, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया था ना, वैसे सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला किया। तो किसी ने धनुष को तोड़ दिया, किसी ने गदा को तोड़ दिया, किसी ने रथ को तोड़ दिया, किसी ने सारथी को मार दिया, तो एकदम वो बलवान होते हुए भी, वीर होते हुए भी वो परास्त हो गया। उसको उन्होंने, दुर्योधन ने अरेस्ट किया उसको, और अपनी कन्या को अपने रथ में लिया और सांब को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, चले गए सब लोग अपने घर। और ये खबर जो है द्वारका में पहुंची, तब कृष्ण भगवान बलराम जी दरबार में बैठे थे, तो खबर आती है तो बुरे बलराम जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, सब लोगों को गुस्सा आता है, कृष्ण भगवान को, सात्यकी को, जो उनके भाई है ना, सात्यकी, प्रद्युम्न, जो बड़े बड़े यादव हैं, कृष्ण भगवान के 16,108 पत्नियों के पुत्र हैं, बड़े बलशाली यादवी सेना के अंदर है वो, सब लोग तुरंत खड़े हो जाते कि हम अभी अभी द्वारका की नारायणी सेना लेकर अभी आक्रमण करेंगे और कुरुओं का गर्व हरण कर लेंगे। अपने आप को क्या समझते हैं कुरु, हाँ तो खबर भी आते ना कैसे युद्ध हुआ, 1-to-1 लड़ रहे थे, तभी सांब ने सबको परास्त कर दिया, और जब साथ में आए तो बेचारा अकेला हो गया और उसको बड़े गलत तरीके से कैद किया गया और जेल में डाला गया। तो सब लोग, बड़े क्षत्रिय लोग जो उनका खून खोल रहा था, बलराम जी शांत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप सब लोग शांत रहो, मैं जाऊंगा और उनसे कुछ युक्ति की बातें करूंगा, समझ में आता है उनको तो अच्छी बात है, दंड दे के आऊंगा। और सबको बलराम जी के बल पर और बलराम जी के बुद्धि पर और बलराम जी के युद्ध कुशलता पर और युक्तिवाद पर बड़ा विश्वास था, सब लोग शांत हो गए। फिर बलराम जी अपनी सेना लेकर द्वारका से निकले हस्तिनापुर की ओर, और हस्तिनापुर के बाहर आकर रुक गए वो, वेशी के बाहर जो होते ना सीमा, अपना तंबू लगाया पूरा, लश्कर का तंबू लगाया क्षत्रियों का, और संदेश भेज दिया कुरुओं को कि आप आओ, बलराम जी पधारे हुए हैं, आपको मिलना चाहते हैं। सब लोग बलराम जी का बल जानते हैं, तो उन्होंने वो निर्णय स्वीकार किया और दुर्योधन के नेतृत्व में सभी कुरुवंशी लोग जो है सीमा के बाहर आए बलराम जी को मिलने के लिए। बलराम जी को सबने वंदन किया, प्रणाम किया, भेंट वस्तुएं दी, गायों को दान दिया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तो फिर बात चालू हो गई। तो बलराम जी ने कहा देखो हमारे पुत्र जो हैं उन्होंने आपकी कन्या को वरने का प्रयास किया, आपने उनको गलत तरीके से कैद किया हुआ है, मेरी आपको ये विनती है या आज्ञा है या सूचना है कि आप सांब को रिहा कर दो और लक्ष्मणा को लेकर आपको उनका विवाह कर दो तो अच्छा होगा। ऐसे उन्होंने बड़े एकदम क्या होता है ना, एकदम गुस्से से नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने उनको बता दिया। तब दुर्योधन ने उनको बहुत ही बुरा जवाब दिया। दुर्योधन ने कहा कि आप लोग ग्वाले हो, हाँ क्या कर रहे थे आप वृंदावन में? गाय चराते थे, दूध निकालते थे उनका, गोबर में खेलते थे, आप लोग तो वैश्यवाणी हो, आप लोग के हमारे साथ खड़े रहने का क्या योग्यता है? और हमने ही आपको ये क्षत्रिय का सम्मान दिया है, कुरुवंश की वजह से ही आप लोग आज राजा बनकर बैठे हो द्वारका के अंदर, ये हमारे आप पर कृपा है। और एक वाक्य ऐसा बोलता है दुर्योधन, वो कभी भी किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोलता है कि पैर की जूती पैर में ही होनी चाहिए, उसको सर पर धारण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप यदुवंशी लोग जो है वो जूती की तरह हो, और आप अभी कुरुवंश के ऊपर आकर सर पे बैठना चाहते हो, नहीं आपको अपनी जगह पर रहना चाहिए, अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए और उस प्रकार से काम करना चाहिए। अभी आप सोच सकते हैं कौन किसको क्या बोल रहा है। हाँ दुर्योधन तो पता ही था, वो ऐसा ही जन्म से बहुत ही क्या कहते हैं उसको एरोगेंट, हाँ उद्दंड बालक था वो जन्म से ही, और युवराज के रूप में भी उद्दंड ही था वो, तो बड़ा गर्व था, किसी का आदर नहीं किया उसने। और बलराम जी के सामने वो ऐसे बकते जा रहा है, बकते जा रहा है, जो दिल में आए बकते जा रहा है, और सब कुरुवंशी भी सुन रहे हैं, और वो एकदम धनुष से निकले हुए बाण की तरह बोलते जा रहा है। तो फिर जब ये सब वार्तालाप खत्म हो गया तो बलराम जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें जो है धीरे 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 लाल लाल कोयले की तरह हो रही थी। और जैसे उनका वार्तालाप खत्म हो गया वो चले गए, बलराम जी खड़े हो गए, बोले अभी कुरुवंश को अच्छे शब्द बोलकर समझाने का काम खत्म हो चुका है, अभी विनती या अच्छे वचन बोलकर उनको समझा जाना नामुमकिन है, अब मैं अपना बल का प्रयोग करूंगा और उनको बिल्कुल घसीट कर यहाँ पर ले आऊंगा। तो तुरंत हल को आह्वान करते हैं और झट से जो उनका हल है, आयुध जो हल है, वो तुरंत हाथ में प्रकट हो जाता है, और बलराम जी अपना विराट रूप धारण करके पृथ्वी पर एक ऐसा हल मारते हैं कि हस्तिनापुर को, पूरे शहर को पृथ्वी से उखाड़ लेते हैं। उनके लाखों रहीवासियों के साथ, हजारों महलों के साथ, उपवन, रास्ता, बगीचा, जलाशय, कुआं, ऐसे सारा मिलकर जो शहर बनता है ना, जहाँ सोचो मुंबई है, हाँ उसको आपने पृथ्वी के नक्शे से उखाड़ लिया पूरा। तो वो हल के नोक पर हस्तिनापुर को धारण किया उन्होंने, पृथ्वी से उखाड़ कर हल के नोक पर लटकाया उसको, और वो बड़ी तेजी से उसको नदी में डुबाने के लिए ले जा रहे थे, जैसे कोई बालक के खिलौना उखाड़ता है ना किधर से और पानी में फेंकता है वैसे। और आप सोच सकते हैं हस्तिनापुर में क्या हो गया होगा, तो जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल को किसी ने हल्के नोक पर उठा लिया, लटका लिया और हवा में तेज गति से जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ कथा सुनेंगे क्या? नहीं सुन सकते। हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में, सभी बालक, स्त्रियां, बच्चे रस्ते पर आ गए, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना, अचानक भूकंप भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, पूरा हस्तिनापुर हवा में जा रहा है, आकाश में उड़ रहा है और इतनी बड़ी तेज गति से जा रहा है, किधर से क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हलक कल्लोल मच गया सब जगह पे, और सब लोग भाग भाग के दरबार में आए कुरुवंश के, उन्होंने विनती किया त्राही माम, बचाओ हमको, क्या हो रहा है। और तभी भीम्स भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, दुर्योधन के समझ में आया कि अभी ये हस्तिनापुर को उखाड़ा जा रहा है और हम लोग सब हवा में है, अभी जमीन पर नहीं है। और पता नहीं किस वक्त कहाँ पर रहेंगे और किस वक्त हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी, जान कहाँ जाएगी, किसी को पता नहीं था। तो सब लोग वो उड़े हुए, मतलब जो हवा में है हस्तिनापुर, वो हस्तिनापुर के सीमा पर आ गए वो लोग, और बलराम जी को उन्होंने पुकारा, बचाओ बचाओ, माफ़ी करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, त्राही माम, हमारी रक्षा कीजिए। तो उनके आक्रोश को, विनती को करुणा होकर उन्होंने विनती किया ना, करुण होकर, तो उन्होंने अपने हल पर धारण किए हुए हस्तिनापुर को पुनः अपनी जगह पर लगा दिया। आप लोग बताए ना, अपने बच्चे लोग जो है ना नक्शा लाते हैं ना घर से, आप नक्शा लाते हैं ना, भारत का 26 राज्य है उसके अंदर, महाराष्ट्र के 26 जिले हैं, तो बच्चे लोग उसको लगाते ना कि जगह पे लगाते ना, और उखाड़ के लेते हैं कभी और जगह पे वहाँ रख देते हैं, फिर उखाड़ के वहाँ रख देते हैं और पूरा नक्शा पूरा करते हैं। तो बलराम जी ने वैसे ही उखाड़े हुए हस्तिनापुर को वापस जगह पर रख दिया, और तभी सभी कुरुवंशी लोग जो हैं कैसे आए पता है, उनको पता था कि बलराम जी को सामने जाएंगे, बलराम सबका वध कर देंगे, तो सबने अपने सामने सांब को रखा, उसके पीछे लक्ष्मणा को रखा, और उसके पीछे सब कुरुवंशी योद्धा जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि गुस्सा केवल आदमी को अगर उसका प्रिय वस्तु दिखाई पड़ेगा तो गुस्सा कम हो जाता ना, तो पहले सांब को देखेंगे तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम सामने आ जाएंगे उसके। इस तरह से उन्होंने सांब को सामने रखते हुए, उसी के रथ में पीछे लक्ष्मणा को रखते हुए, उसके पीछे पीछे अपने रथ लगाते हुए वो आए वहां पर, और सब लोगों ने बलराम जी के दंडवत किया और क्षमा मांगी उनसे कि हमने आपका अपराध किया। और फिर भीष्मदेव बोलते हैं उनको कि हम थी एक्चुअली हमने ऐसा क्यों किया, हम जानते थे कि गलत तरीके से हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमने सांब पर आक्रमण किया तो हमको सांब के पराक्रम जब हमने देखा तो मन ही मन हम समझ गए कि ये हमारे लक्ष्मणा के लिए योग्य वर है। हाँ, तो इतने बड़े महारथियों के साथ में अकेले लड़ सकता है, इतनी हिम्मत के साथ में, वही हमारी कन्या के लिए योग्य है। लेकिन हमने उसको फिर भी अरेस्ट किया क्योंकि हमको आपके बल को भी देखने की इच्छा थी, आपके बल का दर्शन करने की इच्छा थी, और आपने इतने अद्वितीय तरीके से, हाँ, अचिंतनीय तरीके से, जो समझ सकते हैं हम कैसा भी कर सकते हैं, आपने हमारे सामने पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ कर उसका बल का प्रदर्शन किया है, इसलिए हमने ये सब काम किया था। वास्तव में हमारे हृदय में सांब को लक्ष्मणा को देने का विचार हमने निश्चित कर लिया था। हाँ, जब कभी कोई आदमी हारने लगता ना तो फिर ऐसे मीठी मीठी बातें करता है। तो फिर उन्होंने बलराम जी को बहुत गायों को दान किया, बहुत स्वर्ण अलंकार दिए, बहुत घोड़े दिए, बहुत रथ दिए, डावरी होती ना दहेज, तो कई हजारों रथ दिए उनको, कई अलंकार को लदे हुए घोड़े दिए उसको, सारथी दिए, दास दासियां दी, और अलंकार दिए, गाय दिया, गाय के ऊपर सिंह के ऊपर सोने के नक्शीकाम, और पैरों के ऊपर घुंघरू सोने के, हर गाय के ऊपर एक शाल जिसको एम्ब्रॉयडरी किया गया है, इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर हजारों लाखों वस्तुओं के साथ में उन्होंने दहेज के साथ में लक्ष्मणा को सांब को प्रकट किया, प्रस्तुत किया। और फिर इनकी ये बड़ी बारात जो है हजारों दास दासियां के साथ में, घोड़े, रथ, हाथी, गाय, सब बड़ी बारात जो है द्वारका पहुंची, और बड़े धूमधाम से बलराम जी जब लौट के आए तो द्वारका में उन्होंने उत्सव मनाया, विजय उत्सव, कि हमारे बलदाव जी महाराज, हाँ क्या कहते हैं उनको, बलराम दादा, हाँ, विजयी होकर लक्ष्मणा को लेकर, सांब को लेकर, दहेज लेकर लौट के वापस आ रहे हैं। तो सब लोगों ने उत्सव मनाया, उनका विजय उत्सव मनाया, और बड़ी धूमधाम से बलराम जी ने फिर सांब का विवाह द्वारका में लक्ष्मणा के साथ में कराया। इस तरह से हमारे बलराम जी महाराज जो है बल के उगम है, और हम सबको उनका आश्रय लेना चाहिए। बलराम जी बल के प्रतीक होने के नाते वो जो उनका आश्रय लेते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको कृपा देते हैं, उनको संभालते हैं, इसलिए कोई भी संकट आता है तो हम लोग बलराम जी को याद करते हैं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के इस लीला के अंत में लिखते हैं कि जो सवेरे और शाम बलराम जी को याद करता है वो निश्चित ही श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करता है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग वन हू रिमेंबर्स लॉर्ड श्री बलराम, ही विल डेफिनेटली अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा। ये हमको सबको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए बलराम जी का जो जयंती है, हाँ, वो कृष्ण भगवान के पहले आता है, क्योंकि जब हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं, तब हम अनायास से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति करने के योग्य बन जाते हैं। हाँ, इसलिए उनका जन्मदिन जो है उनके पहले आता है, 15 दिन श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को, उसको हम नारळी पूर्णिमा कहते हैं। और जयंती किसको कहते हैं, आजकल तो सब नेताओं की जयंती बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये कहना अपराध है एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से। जयंती उसी व्यक्ति की होती है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, जो दिव्य संत लोग होते हैं, जो भगवान के अवतार होते हैं, उनको ही वामन जयंती, नरसिंह जयंती, कृष्ण जयंती, बलराम जयंती ऐसे पुकारा जाता है। आजकल हम नेताओं के भी जयंती लगाते हैं, अरे जो लोग मरते हैं, जो लोग मरने वाले हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बद्ध हो गए हैं, उनकी जयंती नहीं होती है। जयंती उसी की होती है जो अमर होते हैं, और जो अमर होते हैं भगवान के अवतार होते हैं और भगवान के भक्त संत लोग होते हैं। सही रूप से कहा जाए तो जयंती ये शब्द जो है वो केवल बलराम जी, कृष्ण भगवान, रामचंद्र, लक्ष्मण जी, इनको लगा सकते हैं। तो ये ऐसे अनोखा उत्सव बलराम जयंती का हम मनाएंगे 24 तारीख को, अगस्त को 2010, और मंदिरों में कृष्ण बलराम दोनों का अभिषेक होगा। बलराम जयंती में भी दोनों का अभिषेक होता है और कृष्ण जन्माष्टमी को दोनों का अभिषेक होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। हाँ, दो व्यक्ति हैं, एक भगवान के दो स्वरूप हैं, एक सांवले रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं, गोरे दाऊ जी कहते हैं। हाँ, दाऊ जी महाराज की बड़ी कृपा है वृंदावन में, आज भी बलदेव नाम का मंदिर है उनका, श्री वृंदावन धाम के दक्षिण अंग में उनका स्थान है जहाँ बलदेव जी विराजमान है, और वो चार देवों में से एक देव माने गए हैं जो वृंदावन धाम की दक्षिण पंखुड़ी की रक्षा करते हैं, और अपने पत्नी रेवती के साथ में वहाँ पर विराजमान है। और बड़ा एक वहाँ पर बड़ा कुंड है, मतलब वो कुंड कहना भी उसको सही बात नहीं है, बहुत बड़ा विशाल जलाशय है, उसको क्षीर सागर कहते हैं। जो क्षीर सागर भगवान ने निर्माण किया है ना, जिसमें क्षीरोदक साई विष्णु विराजमान रहते हैं, वो क्षीर सागर जो है वो वृंदावन धाम में इस कुंड के रूप में प्रकट हुआ है, जिसमें बलराम जी स्वयं विश्राम करने गए थे कुछ दिन के लिए, और भगवान की दया से ही स्वप्न देकर उनको फिर प्रकट किया गया और फिर उस मूर्ति को दोबारा वापस स्थापन किया गया। ऐसे बलदाव जी महाराज का चमत्कार है, और सभी लोग जो वृंदावन में आते हैं वो जानते हैं कि बलदाव जी महाराज जो नंदगांव में विराजमान है और कृष्ण भगवान के बाजू में खड़े हैं, दोनों बांसुरी बजा रहे हैं, दोनों का एक ही श्रृंगार है, दोनों के हाथ में मुरली दिया गया है, का कारण क्या है? तीन कारण है उसके। एक, बलदेव जी काले रंग के क्यों हैं? वो तो वैसे गोरे हैं वो, क्योंकि श्री वृंदावन धाम में वो इतने कृष्ण में रहते हैं, इतने कृष्ण के विचार में मशगूल रहते हैं कि उन्हीं का वर्ण जो है वो धारण कर लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कंस के द्वारा बहुत आक्रमण किया गया, बहुत राक्षस लोग बार बार श्री वृंदावन में आते रहे और कृष्ण भगवान को देखते रहे और उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते रहे, तो वो कृष्ण भगवान को बचाने के लिए स्वयं भी सांवला रंग धारण कर लेते हैं, ताकि जो शत्रु आएगा तो वो हो सकता है गलती से बलराम को कृष्ण समझकर उस पर हमला करे, तो बलराम जी उसके लिए रक्षा कर सकते होंगे। और तीसरा कारण ये है कि दोनों बालक स्वरूप में ना, बाल भाव में है नंदगांव में, तो वो हट करते हैं। हम हमारे पास अगर एक बच्चा और एक बच्ची होगी, कुछ एक एक दो साल का अंतर होगा, तो आपने एक को गेंद लाया तो दूसरे को भी गेंद लाना पड़ता है ना, एक को कपड़ा लाया तो दूसरे को भी लाना पड़ता है, एक को कुछ खाना लाया, कुछ केक लाया, दूसरे को भी केक देना पड़ता है, इक्वल इक्वल। और जो भी खिलौना आप लेके आओगे दो लाना पड़ेगा आपको, ड्रेस लाना होगा तो दो लाने पड़ेंगे आप। इसलिए माता जो है दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों को एक ही श्रृंगार करती है, दोनों को बांसुरी देती है, दोनों को गेंद खिलौना वो सेम सेम देती है, मक्खन भी सेम सेम देती है, ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। तो ये सारी कारण हैं जो इसके वजह से बलराम जी गोरे होने पर भी श्रीनंद गांव में सांवले रंग में कृष्ण के साथ में खड़े हैं। और फर्क इतना ही है कि बलदेव जी बाबा के पास खड़े हैं और कृष्ण भगवान मैया के पास खड़े हैं। ऐसे कहते हैं बड़ा बालक जो होता है वो पिता को प्यारा होता है, छोटा बालक होता है तो मैया को प्यारा होता है, इसलिए मैया के पास में हमारे कन्हैया जी खड़े हैं और बाबा के पास में बलदाव जी खड़े हैं, और बलदाव जी अपनी थाली में खाते हैं, लेकिन जो मैया के पास खड़े हैं उनको दो थाली लगाते हैं, एक थाली कन्हैया के लिए लगाते हैं और एक थाली मैया के लिए लगाते हैं, और हमारे जो कन्हैया जी हैं वो अपनी थाली में भी से खाते हैं और मैया की थाली में भी खाते हैं। जब उनका दिल लगेगा तो मैया की थाली में खाएंगे, जब दिल लगेगा तो अपनी थाली में खाएंगे। इस प्रकार से नंदगांव में बहुत चटपटी लीलाएँ हैं कृष्ण और बलराम जी की, और सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि बड़ा ही आनंद देते हैं वो नंदगांव के गोकुल के वृंदावन के वासियों को, इतना आनंद देते हैं कि वो आनंद के सागर में सब ब्रजवासियों को डुबा देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की, बलराम भैया की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।